ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 73 बोलिए। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धान् त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहान् करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धान् त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहान् करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धान् त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहान् करिष्ये वचनं तव।
शब्दार्थ बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा नष्ट दूर हुआ मोह मोह स्मृति स्मरण शक्ति लब्धा पुनः प्राप्त हुई तत्प्रसादात आपकी कृपा से मया मेरे द्वारा अच्युत हे अच्युत कृष्ण स्थितः स्थित अस्मि हूँ गत दूर हुए संदेह सारे संशय परिश्री पूरा करूंगा वचनम आदेश को तब तुम्हारे। अनुवाद मेरे पीछे बोली। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत अब मेरा मोह है दूर हो गया आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं नहीं भगवान नहीं कह रहे हैं कौन कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। ये अर्जुन की आखिरी बात है। भगवान का उपदेश बिल्कुल समाप्त हो चुका है और अब अर्जुन ने भी ये अंतिम शब्द भगवान से कहे हैं और फिर आगे तो फिर संजय ही महात्म बतलाएंगे अर्जुन का कृष्ण का और भगवद गीता का। तो अभी जाप नहीं करना बाहर निकालो हाथ माला से बाहर। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं नष्टो मोहा मेरा मोह नष्ट हो गया स्मृति लब्धा मुझे स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई है तत्प्रसादान आपकी कृपा से हे अच्युत स्थितोस में गत संदेहा अब मैं स्थित हूं संशय रहित होकर के करिष्ये वचनम तब और आपके आदेश का अब पालन करूंगा। तो यहां अर्जुन ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा कृष्ण के आदेश का पालन करूंगा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं, जीव का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं। उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश के अनुसार कर्म करेगा। किसका स्वरूप है? जीव का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। क्या हो गया? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है कि भगवत गीता को श्रवण करे, अपने संशय दूर करे और भगवान के आदेश का पालन करे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। कौन? जीव। जीव का कार्य क्या है? आत्मानुशासन करना, अपनी इच्छाओं पर अनुशासन करना, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना। जब जीव देखता है कि भाई मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से अलग हो रही है तो अपनी इच्छा को तुरंत रोके, क्योंकि उसका कार्य है परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करना, है ना। तो हमेशा जीव का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी इच्छाओं पर हमेशा लगाम रखे। प्रभु लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। हाँ, जो हमने बंगाली में प्यार सुनाई, क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। ये नियम भूल जाता है जीव, क्या? कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो वो क्या सोचता है? कि मैं भोगता हूं, मैं प्रकृति का भोगता हूं। इस कारण से प्रकृति से बंध जाता है, तीन गुणों से बंध जाता है। हाँ, आगे, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। ठीक है ना, ईश्वर का मुक्त दास बनता है। देखो, ईश्वर का मुक्त दास बनता है, और नहीं तो क्या होता है? वो भोक्ता बनता है प्रकृति का, लेकिन बद्ध भोक्ता बनता है। भोक्ता है प्रकृति को, लेकिन प्रकृति में बंध जाता है। तो उससे अच्छा क्या है कि कृष्ण का दास बनना और मुक्ति का आनंद लेना, मुक्ति का अनुभव करना, वो ज्यादा अच्छा है कि भौतिक प्रकृति को भोगना और उसमें बंधे रहना, है कि नहीं? तो बद्ध भोक्ता बनने से अच्छा है क्या? मुक्त दास बनना। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, है ना। जैसे अर्जुन ने कहा, स्थितोऽस्मि गत संदेहा, अब मैं अपनी सामान्य स्थिति में हूं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। हाँ, मोह के कारण सेवा करता है, मतलब भौतिक प्रकृति से जो मोह है, यानी अज्ञान है, उत्पन्न हुआ है, उसके बस में सेवा कर रहा है वो जीव, और सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, जबकि वो सेवा कर रहा है माया की। प्रभुपाद लिखते हैं, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। ये माया है, भगवान की माया कहती है, हाँ तुम स्वामी हो, तुम स्वामी हो, है ना। और उसको जो है लाते मारती है, नहीं नहीं नहीं, तुम तो स्वामी हो, तुम तो स्वामी हो, है? और लाते मारती है माया। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। ये माया जो है ना, किस प्रकार से फंसाती है जीव को, कि जीव सोचता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, मैं ईश्वर बन गया हूं। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वो इतना मूर्ख होता है कि वो ये नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। कितना अज्ञान है जीव के अंदर। थोड़े से काम में अगर सफलता मिल जाती, थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया, है ना। जन्म जन्म से कष्ट भोग रहा है जीव, अज्ञान में फंसा हुआ है, दुखों से घिरा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी अगर कुछ सफलता मिल जाती है तो सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया। ये माया, वो इस पर विचार नहीं करता कि अगर ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है, यही है माया से मुक्ति। और कोई दूसरा मतलब नहीं है मुक्ति का। हाँ, मुक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण को समझना, उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना। कृष्ण का क्या आदेश है? कृष्ण को समझना, क्या कि कृष्ण की कुछ इच्छा है, निर्विशेष नहीं है भगवान। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान क्या है? निर्विशेष है। जो निर्विशेषवादी हैं वे क्या कहते हैं कि भगवान निर्विशेष है, मतलब भगवान कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप जो कुछ भी चाहो करो, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है या भगवान को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप जो चाहो कुछ करो, निर्विशेषवादी कहते हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण को जो समझता है तो जानता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, और कृष्ण जो चाहते हैं वो मैं करूंगा, जो कृष्ण नहीं चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगा। तो ये है माया से मुक्त होना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो ये समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मोह है भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार का मोह दूर किया। उनकी पुस्तकें मोह दूर करती हैं, मोह का खंडन करती हैं प्रभुपाद की पुस्तकें। आगे कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। ये परिभाषा कृष्ण भावनामृत की। कोई आपसे पूछे कि क्या परिभाषा है कृष्ण भावनामृत की, क्या परिभाषा है, तो आप क्या बताओगे? प्रभुपाद जी कहते हैं क्या परिभाषा है कृष्ण भावनामृत की? कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना, कृष्ण भावनामृत की परिभाषा यह है ना। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्वसंपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं, वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं, वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मोह नष्ट हो गया इसका मतलब क्या है, है ना, कृष्ण को समझना और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, है? भगवान के पास सब शक्तियां हैं, लेकिन बड़ा अद्भुत गुण उनका यह भी है, क्या, कि आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं अपने भक्त को। ये कितना बड़ा गुण भगवान का, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो उन्हें नहीं जानता वो मोह के बस में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गए। वे यह समझ गए कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और वे कृष्ण को वास्तव में समझ गए। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। तो क्या फायदा, पूरी भगवत गीता पढ़ ली और फिर वहीं के वहीं रहे, क्या है कि तुम जो कुछ चाहो वही करो, जो कुछ हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो कुछ हो गया सो ठीक हो गया, जो कुछ होगा सो ठीक होगा, है ना। तो मूर्ख के मूर्ख रहे, है ना, और वो गीता सार, गीता का सार नाम दे दिया कि ये गीता का सार है, है ना। तो महामूर्ख व्यक्ति जो है ना इस प्रकार से विचार करता है और वो गीता का सार बताता है। अतएव
भगवत गीता को का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गए कि ये तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उन्होंने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। हाँ, अर्जुन समझ गए क्या ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान की योजना है? क्या ये महाभारत का युद्ध, ये युद्ध के बहाने भगवान क्या करना चाहते हैं? पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम प्रजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन समझ गए, उनका मोह नष्ट हो गया, समझ गए कि कृष्ण की योजना है। तो उन्होंने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। तो यहां अर्जुन और कृष्ण का संवाद समाप्त हो गया, है ना। अब आगे तो चार श्लोक या पांच श्लोक हैं, वो संजय के द्वारा कहे गए हैं। संजय ने अपनी अनुभूतियां बतलाई हैं, अपना मत बतलाया है, है ना। तो इसमें, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को किस नाम से संबोधित किया है? अच्युत के नाम से संबोधन किया है। तो एक और भी श्लोक है जिसमें अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा था, पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए अच्युत, अर्जुन ने कहा था, है ना। तो उस श्लोक के जो है लेख में हमने अच्युत की व्याख्या की है, उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने अच्युत कहा है भगवान को। सर्वप्रथम हम विचार करेंगे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत क्यों कहा। अच्युत श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है क्या? वह व्यक्ति जो अपनी महिमा से नहीं गिरता, या जिसकी महिमा कभी भी नहीं घटती। यद्यपि श्री कृष्ण अनेक अवतार धारण करते हैं, परंतु फिर भी वे गोलोक धाम में अपने नित्य लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। अपनी नित्य लीलाओं से कभी च्युत नहीं होते गोलोक धाम में, और साथ साथ अनेक अवतारों भी जो है धारण करते हैं, इसलिए अच्युत है भगवान। आपको क्या है, अगर कुछ आनंद ले रहे हैं मान लो अपने घर में बच्चों के साथ, और अचानक जो ना व्यापार में कुछ घाटा हो गया तो आपका आनंद समाप्त हो गया और आपको भागना पड़ता है, तो क्या हुआ, आप अपने आनंद से च्युत हो गए, है कि नहीं। तो लेकिन भगवान अच्युत है, तो गोलोक धाम में जो अपनी लीलाएं करते हैं वो उनकी बंद नहीं होती हैं, और इस भौतिक संसार में भी जो भार है, पृथ्वी का भार है, कष्ट है, वो भी दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान क्या है, इसलिए अच्युत भगवान कहलाते हैं। परंतु फिर भी वे गोलोक धाम में अपने नित्य लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात वे अपनी लीलाओं से कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए भी उन्हें अच्युत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण है, श्री कृष्ण के अवतार पशु रूप में भी होते हैं, पक्षी के रूप में होते हैं, जलचर के रूप में, मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, अनेक रूपों में होते हैं। जैसे सूकर अवतार, हंस अवतार, मत्स्य अवतार, श्री राम अवतार, वामन अवतार, है ना। शुकर अवतार पशु के रूप में है, हंस अवतार पक्षी के रूप में है, मत्स्य अवतार जलचर के रूप में, राम अवतार मनुष्य के रूप में, वामन अवतार देवताओं के रूप में, है ना। परंतु इन समस्त अवतारों में श्री कृष्ण की महिमा नहीं घटती, इसलिए अच्युत कहे जाते हैं। किसी जीव को जब मछली का शरीर या सुअर का शरीर प्राप्त होता है तो वह उस शरीर से बंधकर उसी प्रकार की चेष्टाएं करता है तथा उस प्रकार के स्वभाव से भी बंध जाता है। परंतु जब श्री कृष्ण सूकर या मत्स्य अवतार धारण करते हैं तो वे सुअर या मछली के स्वभाव से नहीं बंधते, बल्कि इन सभी अवतारों में श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद अर्थात सनातन और ज्ञान तथा सुख से पूर्ण रहता है, इसलिए अच्युत है भगवान। यहां तक कि जब वृंदा देवी ने श्री कृष्ण को पत्थर बनने का स्थान दे दिया है, तो पत्थर के रूप में भी श्री कृष्ण की पूजा होती है, क्यों? क्योंकि वे अच्युत हैं, उनकी महिमा नहीं घटी, ये पत्थर है कि नहीं। तो आज हम एक घटना पढ़ के सुनाएंगे जिसमें कि एक स्त्री शिला बन गई, पत्थर बन गई। अब वो कुछ नहीं कर सकती है ना, और कोई इसको पहचान भी नहीं सकता कि ये स्त्री है, वो शिला बन गई है ना। लेकिन भगवान जो है ना शिला बन गए तो भी उनकी किसी प्रकार से महिमा नहीं घटती है। शिला और शालिग्राम शिला के रूप में हमें भी श्री कृष्ण पत्थर के स्वभाव से बंधे हुए नहीं है कि उनका दिल पत्थर का हो गया हो, शालिग्राम शिला है नहीं है, बल्कि इस पत्थर के रूप में भी श्री कृष्ण अपने भक्तों के जन्म बंधन को काटते हैं, कर्म बंधन को काटते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को अच्युत कहने का कारण यह है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए हैं, परंतु फिर भी संपूर्ण जगत के ईश्वर के रूप में उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती है ना, इसलिए अच्युत है। अर्जुन के रथ के सारथी बने लें तो भी अच्युत है। यदि कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी चलाता है तो उसका सम्मान घट जाता है, तथा गाड़ी चालक को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में कोई स्थान नहीं मिलता। ड्राइवर को अपने साथ कोई नहीं बैठाता है ना। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण के विषय में ऐसी बात नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण की इस लीला को भी आकाश में देवतागण देखते हैं तथा ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं। ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर साहब के ऊपर भी पुष्पों की वर्षा होती है ना। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब जरासंध की सेना के समक्ष युद्ध छोड़कर भागने की लीला की थी है ना, तो इस लीला से भी किसी की महिमा घट जाती है। युद्ध छोड़ के भागे है कि नहीं, कहते दुम दबा के भागे है कि नहीं। तो परंतु इस लीला से भी भक्तों को महान हर्ष होता है, तथा वे श्री कृष्ण की रंग छोड़ राय के नाम से पूजा करते हैं, इसमें भी उनकी पूजा हो रही है। कोई युद्ध छोड़ करके भागे तो कोई उसकी पूजा नहीं करता, कोई उसका सम्मान नहीं करता है, लेकिन कृष्ण का सम्मान करते हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध छोड़कर भागता है तो वह समाज की दृष्टि में बदनाम होता है, परंतु श्री कृष्ण इन कार्यों को करके भी अपनी महिमा अथवा अपने यश से च्युत नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। श्री कृष्ण ने ब्रज में मक्खन चुराने की लीला की, अब देखिए और भी व्याख्या अच्युत की। मक्खन चुराने की लीला की, इस लीला का भी वर्णन प्राचीन तथा आधुनिक कवियों ने जी भरकर किया है। अब आप चोरी करो तो कौन कौन है जो कवि जो वर्णन करेंगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ वर्णन करेंगे कि इन्होंने ये काम किया। इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा घटने की बात दूर रही, यहाँ तक कि जो गायक या संगीतकार इस लीला गान में सहयोग देते हैं उनकी भी समाज में महिमा बढ़ जाती है। कृष्ण की चोरी की लीला से कृष्ण की महिमा तो घटी नहीं, बल्कि जो वर्णन करते हैं उनकी महिमा भी बढ़ जाती है। चोर का गुणगान करने से उनकी महिमा बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के सभी कर्म दिव्य हैं। श्री कृष्ण यदि कोई खराब कर्म भी करते हैं तो उस कर्म से भी श्री कृष्ण की महिमा घटने के स्थान पर बढ़ती जाती है, इसीलिए श्री कृष्ण को अच्युत कहा जाता है। श्री कृष्ण को अच्युत समझना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतया जब किसी व्यक्ति को बड़ा पद मिलता है तो आगे चलकर एक ऐसा भी समय आता है जब वह व्यक्ति अपने पद से च्युत हो जाता है। इस समय बड़े बड़े नेतागण अपने पद से च्युत ना होने के लिए अत्यंत संघर्ष करते रहते हैं कि कुर्सी उनकी ना जाए। इतने संघर्षों के बावजूद भी वे एक न एक दिन अपने पद से च्युत हो जाते हैं, उनको गिरा दिया जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है तथा उसे भय है कि यदि वह कार्य ना करे तो उसे पद च्युत कर दिया जाएगा। परंतु श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि शायद श्री कृष्ण को भी इसी प्रकार भगवान का पद मिला होगा तथा कभी श्री कृष्ण भी भगवान के पद से च्युत होंगे और किसी अन्य जीव को भगवान का पद मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हें किसी ने भी भगवान का पद नहीं दिया है और ना ही कोई उन्हें भगवान के पद से च्युत कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, यो माम जमनादिम चावेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमोचते। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण को भगवान के रूप में अजन्मा तथा अनादि मानता है वही मनुष्यों में विशेष मूर्ख नहीं है।
तथा वह व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है। इसका अर्थ है कि पापों के कारण ही हमारे अंदर ये विचार आता है कि शायद मैं अथवा कोई अन्य व्यक्ति श्री कृष्ण के समान कभी बन सकता है। जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो चुका है वो इस बात को आसानी से समझ सकता है कि श्री कृष्ण के समान भी ना तो कोई हुआ है, ना है और ना ही कोई होगा। फिर श्री कृष्ण से बड़ा बनने का प्रश्न ही कहाँ है। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में सो रहे हैं तो भी वे भगवान हैं, अच्युत हैं। माता की गोद में सो रहे हैं है ना, तो भी वे भगवान हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं है। यदि वे ऐसे सोते ही रहेंगे तो उन्हें भगवान के पद से च्युत कर दिया जाएगा। आप सोते रहोगे तो कोई ना कोई बोल ही देगा, कैसे सोते रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे है ना। लेकिन भगवान है, सो रहे हैं, लेकिन पूरी सृष्टि के मालिक हैं, उन्हें चिंता नहीं है कोई उनको भगवान के पद से गिरा देगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण अच्युत भगवान है। हिरण्यकश्यपु जैसे पापी व्यक्ति समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या तथा समाधि के अभ्यास से भगवान बन सकता है। हिरण्यकश्यपु ने तीव्र तपस्या के द्वारा कुछ सफलता प्राप्त की तथा वह अपने को भगवान समझने लगा। फिर उसने श्री कृष्ण को भगवान के पद से च्युत करना चाहा कि भाई भगवान तो एक ही होना चाहिए, अगर मैं भगवान बन गया हूं तो फिर दूसरे भगवान क्यों हैं। तो कृष्ण को भगवान के पद से च्युत करना चाहा उसने। पापी होने के कारण वो नहीं समझ सकता था कि श्री कृष्ण अच्युत भगवान है, परंतु अंत में उसका विनाश हुआ। श्री कृष्ण के समय में एक पौंडरक नाम का राजा भी अपने को भगवान समझने लगा और उसने भी श्री कृष्ण को संदेश भेज दिया, क्या, कि श्री कृष्ण भगवान के पद से त्याग पत्र दे दें क्योंकि अब मैं भगवान बन गया हूं, आप त्याग पत्र दे दो भगवान के पद से, मैं भगवान बन गया हूं। श्री कृष्ण से संदेश दिया, मेरे पास भगवान के जो चिन्ह सुदर्शन चक्र आदि हैं उन्हें मैं तेरे ही ऊपर त्यागूंगा वो कहता है कि भगवान के चिन्हों को त्याग दो, तुमने जो भगवान के चिन्ह धारण किए उनको त्याग दो। तो भगवान कहते हैं मैं अपने चिन्ह तेरे ऊपर ही त्यागूंगा उस समय तू मरकर कुत्ते और स्यारों की शरण में जाएगा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने को भगवान समझता है तथा भगवान की शरण नहीं लेता उसे स्वान की शरण लेनी पड़ती है। स्वान माने कुत्ता, तो स्वान की शरण लेनी पड़ती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बतलाया है कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने अच्युत इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में जो कार्य स्वीकार किया है उस कार्य में श्री कृष्ण किसी भी प्रकार की भूल नहीं करेंगे। सारथी का कार्य है रथ में बैठे हुए अपने स्वामी की रक्षा करना। सारथी अपनी संपूर्ण शक्ति से तथा अपनी संपूर्ण बुद्धि से अपने स्वामी की युद्ध के समय में रक्षा करता है। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण इस कार्य में किसी भी प्रकार से ढीले नहीं होंगे, यानी च्युत नहीं होंगे। सारथी का काम लिया है उन्होंने। हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अनेक उपायों के द्वारा अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। संपूर्ण विश्व के इतिहास में श्री कृष्ण के समान सारथी आज तक कोई भी नहीं हुआ। अच्युत सारथी कभी चूकता नहीं है, ऐसा सारथी। जिस समय अश्वसेन नाम का सर्प अर्जुन से अपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए कर्ण के तरकस में घुस गया, एक सर्प था, तथा कर्ण ने धोखे से उसे बाण समझकर अर्जुन के गले पर निशाना लगाकर संधान किया, उस समय इंद्र आदि देवता अर्जुन के जीवन को संकट में समझकर हाहाकार करने लगे। देवता लोग समझ गए कि कर्ण के धनुष में जो बाण है वो क्या है, बाण नहीं है, सर्प है। और कर्ण को भी पता नहीं है इस बात का, परंतु श्री कृष्ण ने अपने चरण से रथ को तुरंत दबा दिया। ध्यान से सुनो क्या किया कृष्ण ने, अपने चरण से रथ को तुरंत दबा दिया जिससे पहिए पृथ्वी में धंस गए तथा घोड़े घुटनों के बल बैठ गए। और कर्ण का छोड़ा हुआ वो बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के गले में ना लगकर मुकुट में लगा। वो मुकुट सर्प की विष अग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सोचो रत्नों का मुकुट था वो जल रहा था है? तो फिर अर्जुन के गले का क्या हाल होता, अगर गले में वो बाण लगता तो क्या हाल होता अर्जुन का।
मुकुट में लगा तो मुकुट जल रहा है जैसे लपटें निकल रही रत्न के मुकुट में, कितनी तेज अग्नि थी उसकी। श्री कृष्ण के सारथ्य की यह कुशलता देखकर देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्त की सेवा करने में कभी भी कमी नहीं रखते, इसीलिए उन्हें यहां पर अच्युत कहा गया है। तो यहां पर अच्युत की व्याख्या हुई। तो यहां पर अर्जुन का यह भाव है कि आप अच्युत हैं, मतलब आप तो च्युत होते नहीं, आप तो गिरते नहीं है, बल्कि आपने मैं जो गिरा था संसार समुद्र में आपने मुझे भी निकाल लिया है कि नहीं। अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लिया तो नहीं तो होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है नदी के इस पार खड़ा है और जो डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको बचाना चाहता है, लेकिन अगर उसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है तो डूबता हुआ उसको खींच लेगा तो वो भी डूब जाए, है कि नहीं। नहीं, भगवान ऐसे नहीं है ना? अगर आप भगवान को पकड़ लोगे तो भगवान आपको बचाएंगे, लेकिन भगवान नहीं गिर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि भगवान अच्युत हैं, है ना। तो अब अर्जुन ने जैसे कहा है करिष्ये वचनं तव, कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जन्म जन्म के भगवान के भक्त हैं। तो इस घटना जो अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इसमें हम देखेंगे कि अर्जुन के प्रभाव से एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के हमेशा विरुद्ध कार्य करती थी, अर्जुन के प्रभाव से वो बदल गई और वो अपने पति के प्रति अनुकूल हो गई। तो ये घटना जो है जैमिनी महाभारत में है, जिस समय अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे चल रहे हैं और वो जो घोड़ा है वो विंध्य पर्वत पर पहुंचा, भ्रमण करते करते कहां पहुंचा, विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। तो